आज हम आपके लिए जो सब्जेक्ट लेके आए हैं वो है साइंस एंड टेक, और हम बात करेंगे भोजन उत्पादन एवं पशुपालन के बारे में। जी हाँ, और जानकारी देने के लिए हमारे साथ बनी हुई है हमारी एक्सपर्ट मिस नीलम गुप्ता जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ।
थैंक यू। आज हम बात कर रहे हैं इस प्रोग्राम के दौरान अपने सेकेंडरी सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे फूड प्रोडक्शन एंड एनिमल हस्बेंड्री, यानी भोजन उत्पादन या खाद्य उत्पादन और पशुपालन विषय पर, जो कि ये लेसन है आपका 31। और इसका जो मॉड्यूल है ये है आपका मॉड्यूल नंबर 7 है, ह्यूमन एंड एनवायरमेंट, और ये डिस्पैच 2 है आपका। अगर आप चर्चा को सुन रहे हैं तो अगर आप आपके पास में आपकी ये पुस्तक है तो उन्हें भी आप ज़रूर निकाल सकते हैं, खोल सकते हैं, देख सकते हैं कि हम आज क्या चर्चा करने जा रहे हैं। इस चर्चा के दौरान हम बात करने की कोशिश करेंगे कि करंट फूड प्रोडक्शन क्रॉप प्रोडक्शन का जो करंट स्टेटस है वो क्या है, और साथ ही खाद्य सुरक्षा के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर हम बात करने की कोशिश करेंगे कि कृषि का विकास कैसे हुआ और हरित क्रांति क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, और भारत में जो कृषि हरित क्रांति है इसका क्या इम्पैक्ट है बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्रॉप प्रोडक्शन का जो खाद्य जो फसल उत्पादन का सिद्धांत और उसकी तकनीक या मेथड्स क्या हैं, जिसमें कुछ हम बात करते हैं कि इसे क्रॉप रोटेशन हो सकता है, मिक्स फार्मिंग हो सकती है, मल्टीपल क्रॉपिंग की बात कर सकता है, और इसमें शामिल होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक कृषि। इसके अलावा इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या हैं, कि कौन कौन से हम स्टेप ले शामिल करते हैं, कौन कौन से हम स्टेप्स लेते हैं अपनी कृषि पद्धतियों को सुधारित करने के लिए, जिसमें शामिल होता है मेकिंग द सॉइल सुटेबल फॉर फार्मिंग, सेकेंड आता है इसमें ट्रीटमेंट ऑफ सीड्स, थर्ड हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सीड फील्ड एंड टेकिंग केयर ऑफ न्यू प्लांट्स, और बात करते हैं ट्रांसपोर्ट प्लांटेशन की, और बात करते हैं हम इसमें जो हम पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, मैन्यूर का इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी हम ग्रोथ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को भी हम इस्तेमाल करते हैं। सिंचाई महत्वपूर्ण होती है किसी भी फसल को उगाने के लिए, और फसल कैसे उगाई जाती है, हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप की बात करते हैं, और जब हरित क्रांति की बात करते हैं तो उसमें हमने हाइब्रिड जो हाई यील्डिंग वेराइटीज़ होती हैं, साथ ही साथ हम उसमें बायो फर्टिलाइजर्स की भी डालते हैं। तो वो कौन कौन से बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल आधुनिक कृषि में किया जाता है, जैसे वर्मी कंपोस्ट हो गया, कंपोस्ट हो गया, फार्म यार्ड है मैन्यूर जो होती है उसकी हम बात करेंगे। अगर हम शुरुआत करते हैं तो हम देखते हैं कि जो मानव है उसका 3-4 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, 2 लाख वर्ष पहले मानव का जन्म हुआ आविर्भाव हुआ था ऐसा मानते हैं, और जब बच्चा भी अगर आता है दुनिया में तो वो भी उसे भी खाने का फूड फॉर्म की ज़रूरत होती है, मतलब किसी को भी अपनी जीव चलाने के लिए अपना लाइफ चलाने के लिए सबसे पहले हमें खाने की ज़रूरत होती है, पीने की ज़रूरत होती है। तो जो खाद्य है वो शुरू से ही एक आवश्यकता है सभी जीवधारियों की, और शुरू से अगर हम देखें तो जो मानव है वो प्लांट्स और एनिमल से जो खाना प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसी पर निर्भर होता है, यानी वो पेड़ पौधों से कंदमूल फल बीज उसका इस्तेमाल करते हैं, और जानवरों के वो मांस का इस्तेमाल करते हैं अपने भरण पोषण के लिए। तो खेती का जो आविर्भाव हुआ था वो हुआ था 12,000 ईसा वर्ष, और जब ये उस समय उससे पहले क्या था कि मानव जो था खानाबदोश की लाइफ जीता था, और उस समय उसको जो भी मिल जाता था या फिर कहीं कंदमूल फल मिल गए पेड़ उसी से वो अपना जीविका चलाता था। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी तो उसमें उसने खेती करना शुरू किया, और जो एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर खाली खेती नहीं है, वो एक बहुत सारी चीज़ों का एक ग्रुप है जिसे कि हम एग्रीकल्चर के कारण उसमें रखते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर इज़ ए कंपोजिट टर्म दैट इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच इन्वॉल्व अप्रोप्रिएट यूटिलाइजेशन ऑफ अर्थ्स रिसोर्सेज फॉर फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन नीड्स एज वेल एज उसमें क्या है कि ह्यूमन नीड्स में क्या क्या शामिल हो रहा है, फूड, जानवरों के लिए फॉडर, फाइबर एंड फ्यूल, ये सबको जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं उसको हम कैटेगराइज करते हैं एग्रीकल्चर। तो जैसे हमने बात की कि हमारे देश को अभी से नहीं प्राचीन समय से ही मसालों के लिए जाना जाता है, एंशियंट इंडिया के से ही, प्राचीन भारत की अगर हम इतिहास उठाकर देखते हैं तो वहाँ पर भी हमें मालूम चलता है कि वहाँ मसाले हो गए, फल हैं, कुछ फूल हैं, उनके लिए हिंदुस्तान को जाना जाता है। और जब कोलंबस ने भारत की खोज की थी, दुनिया घूमने के भ्रमण के लिए निकला था, तो वो पहुँच करते करते वो अमेरिका की खोज करते करते निकला था, लेकिन वो पहुंच गया था भारत में और कालीकट पर जाकर वो रुका था। और कृषि में जो ग्रोइंग क्रॉप्स हैं, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको शामिल करने के साथ साथ जो मेथड्स हैं कि फूड प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, वो मेथड्स भी इसमें शामिल होते हैं। और एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज़ को भी हम, यानी मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स को हम बात की बात करें, जिसमें एपिकल्चर भी हो सकता है, पिसीकल्चर भी हो सकता है, फ्लोरिकल्चर भी हो सकता है, तो ये सबको शामिल किया जाता है एग्रीकल्चर में। जो आधुनिक परिभाषा में हम देखते हैं तो एग्रीकल्चर में ये सभी चीज़ें शामिल है, खाली खेती करना ही शामिल नहीं है, ये सब चीज़ें भी इसमें शामिल होती हैं। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि कृषि का जो विकास है और हरित क्रांति के बारे में। तो जैसे हमने बात की कि मानव तो शिकारी और संग्राहक था, और कच्चा मांस हो गया, फल फ्रूट हैं जो वो कच्चे ही खा लेता था, और आरंभ में कुछ उसने हड्डी के या पत्थर के औजारों से छोटे मोटे जानवर भी मारे हैं, तो वो कच्चा मांस दिया और उसको खा लेता, जानवर को मार के खा लिया जाता था। लेकिन एक बार उसने जैसे स्टोरी बोला जाता है कि उसने दो पत्थर लिए जिनको रगड़ा, उससे आग निकली और उसमें वो उसने मांस को भून कर खाया तो उसे बहुत टेस्टी लगा और वो पचने में भी ईजी था। तो धीरे धीरे वो उसने जब आग का आविष्कार हुआ तो फिर उसके बाद में उसने खेती का आरम्भ किया, और जब खेती करना शुरू किया तो साथ में पशुपालन भी हुआ। और खेती के साथ जब पशुपालन प्रारंभ किया तो उसमें सबसे पहले उसने भेड़ बकरी और कुत्ता, क्योंकि रक्षा रखवाली के लिए था, और जो कृषि में उसने जो बीज लिए तो वो गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाने शुरू की थी। और अगर हम देखें एंशियंट हिस्ट्री में अगर देखें इंडिया की, तो वैदिक काल से लेके आज तक हमारा देश जो है वो खेत कृषि प्रधान देश ही रहा है। और लेकिन आज हमने खाली हम ट्रेडिशनल खेती ही नहीं करते हैं, उसमें हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स किए हैं, नई नई प्रणालियों को उसमें इंट्रोड्यूस किया है, जिसके चलते जो खेती है उसका स्वरूप काफ़ी बदला है, काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। क्योंकि जहाँ पहले हम किसान जो थे वो खेती के लिए बारिश पर निर्भर करते थे, अगर बारिश अच्छी हुई तो खेती अच्छी होती थी, अदरवाइज़ सूखा पड़ जाता था, अकाल पड़ जाता था। लेकिन हमने वाटर हार्वेस्टिंग का, हमने नल कूप के ज़रिए, ट्यूबवेल के ज़रिए सिंचाई के अन्य साधन जो खोजे, जिसके चलते हमने खेती को हमें एक नया आयाम मिला, हमने वर्षा पर निर्भर रहना कम किया, हमने तालाब बनाए, बावड़ी बनाई, जिसमें कि हम जल का संचय करते थे, जिस समय बारिश होती थी वो जल को संग्रहित किया जाता था। तो आज अगर हम बात करें भारत में कृषि अनुसंधान और सस्टेनेबल जो एग्रीकल्चर है, उसके कारण भारत दुनिया में अपने एक प्रमुख स्थान हासिल कर चुका है कृषि के क्षेत्र में खोजों के और विकास के कारण। और जो भारत की, क्योंकि भारत को बोला जाता है कृषि प्रधान देश है, क्योंकि मोर देन 70% पर्सन्स लगे हुए हैं खेती से जुड़े हुए कार्यों में, और इससे जो इंडिया की इकोनॉमी है वो कम से कम लगभग 70-80% जो है रेवेन्यू जनरेट होता है खेती से। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा एक सेक्टर है। और 1905-07 के दौरान, क्योंकि कृषि को एक इंडस्ट्री के तरह से देख रहे हैं हम, तो यहाँ पर अनुसंधान की भी इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, क्या क्या नई नई तकनीकें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसके लिए कृषि महाविद्यालयों की स्थापना की गई थी। तो सबसे पहले 1905 में कृषि विद्यालय बनाया गया था, और आधुनिक भारत में हम देखें तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो कि पूसा के नाम से जानी जाती है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि न्यू दिल्ली में है, और यहाँ पर कृषि शोध के लिए और विकास की दिशा में अनेक काम करने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक यहाँ पर कार्यरत हैं। तो अब हम बात करते हैं भारतीय कृषि में हरित क्रांति का क्या योगदान है उसके बारे में। तो जो इसके लिए 1968 से 1988 के बीच में कृषि में जो फसल पैदावार है और खाद्य उत्पादन में एक बहुत बड़ा चेंज आया, परिवर्तन आया, जैसे कि एक क्रांति के रूप में देखा गया था। और ये जो इरा है इसे भारतीय कृषि का हम गोल्डन एरा भी कहते हैं, और इसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से यानी हरित क्रांति के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसी के कारण हम कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो पाए थे, क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या को खाद्यान्न की पूर्ति के लिए ये ज़रूरी था कि इसमें हाई यील्डिंग वैराइटीज़ का इस्तेमाल किया गया, फर्टिलाइजर्स का, केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी इस्तेमाल किया, ताकि हमारी जो खेती का जो निश्चित एरिया था उसमें हमने उसी एक क्षेत्र में उतना ही परिश्रम करके 2-3 गुना फसल ज़्यादा पैदा की थी, क्योंकि उसमें हमने हाई यील्डिंग वैराइटीज़ का, गेहूं और चावल की वैराइटीज़ का इस्तेमाल किया था। और इसके जो श्रेय है इस कार्य को करने के लिए जिन्हें जो श्रेय जाता है वो जाता है डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को, और उन्हें क्योंकि लोगों को भूख से नहीं मरना है, इस भूख से क्यों मरे इस पर उन्होंने विरोध किया था, और उसी लिए ये इन्होंने हाई यील्डिंग वैराइटीज़ का, जो अमेरिकी वैज्ञानिक थे नॉर्मन बॉरलॉग, उनके साथ मिलकर इस हरित क्रांति को वो इंडिया में इंट्रोड्यूस कर पाए थे, जिसके चलते उन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और ये है, ये कैसे क्यों संभव हुआ ये हरित क्रांति, इसमें हमारे जो वैज्ञानिक थे और साथ में जो हमारे किसान थे उनका जो जॉइंट वेंचर था, साझे प्रयास थे, उनके चलते ही ये संभव हो पाया था। तो भारत में जैसे हमने बात की कि हरित क्रांति में गेहूं और धान की उन्नत खेती की से आरंभ हुआ था, और इसके अंतर्गत जो काम किया गया था वो ये किया गया था कि उच्च संसाधन तकनीक और समुचित संसाधनों के प्रयोग से जो सीमित खेत का एरिया था उसमें अधिक अन्न उत्पादित किया गया था, और भारत की जनसंख्या को कि जो खाद्य सुरक्षा है उसके लिए कृषि उत्पादकता में इसके फलस्वरूप वृद्धि हुई थी, और काफ़ी कृषि का जो बेहतर विकास हुआ था, आधुनिक यंत्रों का इस्तेमाल करना शुरू किया गया था, आधुनिक कृषि तकनीकों का इस्तेमाल इसमें किया गया था, जिससे ये हुआ कि जब एक बार इस्तेमाल किया तो उसे आगे कंटिन्यू करना चाहिए, उसे स्थिर रख पाएँ। और ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि सभी को, क्योंकि ट्रेडिशनल तरीके से खेती होती थी उसमें उपज कम होती थी, लागत भी ज़्यादा लगती थी, लेबर भी ज़्यादा लगता था, मैन पावर का भी इस्तेमाल होता था, लेकिन जब आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया तो उसी उतने ही जो सहूलियतें थी, सुविधाएं थी, उसी में अधिक अन्न का उत्पादन किया गया था, और इसको आगे तक ले जाना, मेंटेन रखना एक बहुत बड़ी चुनौती भी थी। और समय के साथ साथ खेतों से बहुत अधिक उत्पादन मिले इसके लिए हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया, हमने पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का, फंगिसाइड्स का हमने इस्तेमाल किया। और जब इसकी, क्योंकि हमारा लालच जब बढ़ जाता है, हमें बहुत ज़्यादा चीज़ चाहिए, तो उसके लिए हम प्राकृतिक संतुलन का ध्यान नहीं रखते हैं, और बेहताशा उसमें वृद्धि हुई, जिसके चलते आपका वाटर पोल्यूशन भी हुआ, एयर पोल्यूशन भी हुआ, और वो जो केमिकल और पेस्टिसाइड्स जिनका हमने इस्तेमाल किया था फर्टिलाइजर्स का, वो हमारे फूड चेन में भी शामिल हो गए। जैसे DDT की बात करते हैं तो बायोमैग्निफिकेशन हुआ, न्यूट्रोफिकेशन हुआ, क्योंकि उसमें जो सुपोषण हो गया, क्योंकि वाटर बॉडीज में इन तत्वों की का जो रेशो था वो बढ़ गया था उसमें। और जब जब ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ का डाल दी जाए तो उससे भी क्या होता है कि जो भूमि है उस वो ख़राब होने लगती है, डिग्रेड होने लगती है, और उसकी जो उत्पादक क्षमता है वो भी कम होने लगती है। और जहाँ हम देखते हैं, एक ओर तो हमारा खाद्यान्न के क्षेत्र में हमने आत्मनिर्भरता प्राप्त की, लेकिन दूसरी तरफ जमीन पर यानी भूमि पर और मनुष्यों पर भी इसका दुष्प्रभाव दिखा। लेकिन हरित क्रांति ने हमें एक जो डायरेक्शन दिया, दिशा दी थी, उसमें अब थोड़ी सी तब्दीली के साथ हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक कृषि करने की दिशा में अपना काम करना शुरू किया और आज उसी को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो कंटिन्यूस अगर हम रेवोल्यूशन को, सस्टेनेबल ग्रीन रेवोल्यूशन को रखने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी कि हमें इस बात को सोचना पड़ा कि क्या जो आज की स्थिति है उसको ऐसे ही चलने दें या फिर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर की बात करें, की ओर बढ़ें, ताकि हम कृषि यंत्र जो हो गए, पंप हो गए, उर्वरक हो गए, कीटनाशी बनाने वाले उद्योगों की स्थापना करें, जल और ऊर्जा को नियमित रूप से पाने के लिए सिंचाई और ऊर्जा परियोजनाओं का को बढ़ावा दें, और तीसरी बात इसमें यह थी कि जो फसल हैं या पशुओं की जो नई स्वस्थ पीड़क प्रतिरोधी और उन्नत पैदावार वाली किस्मों के प्रजनन के लिए अनुसंधान और विकास संस्थाओं की स्थापना की जाए। तो क्योंकि कंटिन्यूस हमें ग्रीन रिवोल्यूशन रखना है, तो हमें इन सब ये चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हो जा रही थी। और गांव-गांव में ये हमें, गांव और शहर में एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की भी ज़रूरत थी, जिसके अंतर्गत चलाया तो ये हुआ कि उसके अंतर्गत हमने प्रमोट किया सतत कृषि, जैविक और टिकाऊ खेती का यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात की, और साथ ही साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की। उसको बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया जा रहा है, और इसी वजह से कि क्यों, ताकि हम जो प्रतिदक्षता है और निर्णय लेने की क्षमता का विकास कर पाएँ कि हमें इस खेत में ऑर्गेनिक फार्मिंग के जरिए ही अपनी यील्ड का, और हमें पेस्टिसाइड का कम इस्तेमाल करना है, फर्टिलाइजर्स का कम इस्तेमाल करना है, और हमें भूमि की उर्वरता को बनाए रखना है और प्राकृतिक संतुलन को भी नहीं बिगड़ने देना है। अगर आपको कभी मौका लगे तो आप देख सकते हैं आपके आसपास कोई तालाब है या कोई खेत है, तो वहाँ जाकर आप पता कर सकते हैं कि अगर वो कोई तालाब आपके पास पास है, वो सूख भी गया है, तो पता करें कि कब था, पुराना कितना है, और उसका खेती के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता था। और कभी अगर आपको, अगर आप दिल्ली या उसके आसपास रहते हैं, या कभी किसी भी क्षेत्र में रह रहे हैं और आपको कभी दिल्ली आने का मौका लगे, तो आप पूसा इंस्टीट्यूट को ज़रूर देखने जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संग्रहालय है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की, कि जो फसल उत्पादन है उसके सिद्धांत और कौन कौन सी विधियां हैं जिसके अंतर्गत वो काम करता है। तो फसल उत्पादन और खेती का प्रबंधन जो है कृषि विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत आता है उसे हम एग्रोनॉमी यानी सस्य विज्ञान कहते हैं। और इसमें जो सिद्धांत, एक किसान अगर खेती कर रहा है तो वो फसल उत्पादन और खेती प्रबंधन के लिए किन-किन सिद्धांतों का पालन करता है या करना चाहिए, उसके वो कौन-कौन से हैं पॉइंट्स, उस पर हम बात करते हैं। तो पहली तो हमें बात करनी होगी कि मृदा की उर्वरकता उर्वरता और उत्पादकता को बनाए रखने के लिए और फसलों में कीट रोग और खर पतवार जो वीड्स होते हैं उनको हटाने का प्रबंध करना ज़रूरी है। दूसरा कि जो स्वस्थ बीज हैं उनको खेत से, जो बीज हम बो रहे हैं उसमें हमें उचित दूरी और गहराई का सही सही गहराई पर बोएं और सही समय पर ही उन्हें बोएं, ताकि वो उनका जर्मिनेशन प्रॉपर होगा, तभी वो यील्ड अच्छी होगी। तीसरी इसमें जो हम बात करते हैं, तीसरा सिद्धांत है, वो है कि फसल के लिए जो भी हम खाद है, उर्वरक है, उसका और जल का उचित प्रबंध ज़रूरी है। कि आपको ये पता होना चाहिए कि इस फसल को उगाने के लिए हमें इस तरह का फर्टिलाइज़र चाहिए, उर्वरक चाहिए, और इसके लिए कितना पानी हमें ज़रूरी है। चौथी बात हम करते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो मौसम हैं, जलवायु है, वायु और मृदा के लिए विभिन्न फसलों और उनकी प्रजातियों का उचित चयन करना है, फसलों की उचित समय पर कटाई करना है, फसल के उत्पादन का वैज्ञानिक ढंग से भंडारण, यानी हमने फसल उगा ली, उग गई, हमने काट ली, लेकिन उसको स्टोर प्रॉपर अगर नहीं होगा, फसल अगर कटी हुई खेत में पड़ी है और बारिश आ जाए तो वो सारी फसल खराब हो जाती है। तो हमें भंडारण का भी वैज्ञानिक ढंग से हमको भंडारण करना होगा, यानी स्टोरेज भी हमें कोल्ड स्टोरेज वगैरह आसपास ही हो, ताकि उसके लिए हमें ज़्यादा मनी और मैन पावर का इस्तेमाल नहीं करना है। कई बार होता है कि फसल खेत में कटी हुई पड़ी है, कोई ले जाने का परिवहन का साधन नहीं मिल रहा है, फसल खराब हो जाती है और उससे किसान को काफ़ी नुकसान भी हो जाता है। प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों में जो फसल उत्पादन के लिए हम मल्टीपल क्रॉपिंग की बात करते हैं, बहुफसली खेती के लिए, या फिर हम मिक्स्ड क्रॉपिंग की बात करते हैं, उनको अगर करें कि एक फसल ख़त्म हो गई, खराब हो गई, तो कम से कम दूसरी फसल उसी साथ में अगर है तो उससे उसको थोड़ा सा कंपनसेट किया जा सकता है। हम क्रॉप रोटेशन का भी इस्तेमाल करते हैं, ताकि एक फसल को अगर ज़्यादा, उसके बारे में थोड़ा आगे बात करेंगे कि एक फसल की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके साथ ही अगर एक की ज़्यादा है तो दूसरी फसल कम रिक्वायरमेंट वाली हो, ताकि वो एक चक्र हमारा चलता रहे। और विभिन्न प्रकार की वैज्ञानिक विधियों को अपनाकर हम लैंड जो भूमि का सुधार और उसका प्रबंधन भी कर सकते हैं। ये फसल उत्पादन के बेसिक सिद्धांत हैं, जिन्हें की एक जब हम कोई फसल उगा रहे हैं खेत में तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं। अब हम बात करते हैं फसल उत्पादन की विधियों के बारे में। कई तरह विधियाँ हैं, जिसमें हम क्रॉप रोटेशन की बात करते हैं, जिसमें हम मिक्स क्रॉपिंग की बात करते हैं, हम मल्टीपल क्रॉपिंग की बात करते हैं, और हम ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक कृषि या कार्बनिक कृषि के बारे में भी बात करते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा ज़्यादा विस्तार से बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्रॉप रोटेशन यानी फसल चक्र के बारे में बात करते हैं। ये एग्जैक्टली होता क्या है? तो चक्र से साइकिल समझ में आ रहा है कि एक चक्र ही घूमना है। कैसे? कि किसी निश्चित समय में खेत में एक निर्धारित क्रम में जो फसलों को उगाने का जो क्रम है, उसे ही हम फसल चक्र कहते हैं। और इसमें ये ध्यान रखा जाता है कि जिस फसल को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है उसे पहले उगाते हैं, और उसके बाद में कम पानी जिसको ज़रूरत है वो फसल उगाते हैं। जैसे कि गेहूं का, अगर हम को चना और धान की फसल उगानी है तो हम पहले चना की फसल उगाएंगे उस खेत में, उसके पहले हम धान की फसल उगाएंगे, क्योंकि धान को हमें चाहिए होता है बहुत ज़्यादा पानी, उसके बाद हम चने की फसल को उगाते हैं। उसी तरह से ये भी ध्यान रखा जाता है कि जिन फसलों को अधिक खाद की ज़रूरत है तो उन्हें पहले उगाते हैं, और उसके बाद में जिनको कम खाद की आवश्यकता होती है फसलों को उसे उगाते हैं। और जैसे कि अगर हमें खेत में आलू और मूंग उगाना है तो पहले हम आलू की फसल उगाते हैं और बाद में हम मूंग की फसल उगाते हैं। उसी तरह से डीप रूटेड फसलों को पहले के बाद में हम जो स्मॉलर रूट वाली फसलें होती हैं उनको उगाते हैं। जैसे हमने हम लोग कपास और मेथी दोनों उगानी है तो पहले हम कपास को उगाएंगे, उसके बाद में हम मेथी की फसल उगाते हैं। और यहाँ भी अगर आपका एक्सपीरियंस है, आप अगर गांव या खेत में देहात में रहते हैं, गांव खेतों से अगर आपसे संबंध है, तो आप गेहूं की फसल कब बोई जा रही है देख सकते हैं, और कब कटती है, धान की फसल कब बोते हैं कब काटते हैं। तो अगर हम गेहूं की फसल की बात करते हैं तो उसे हम उसकी जो बुआई है वो नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में गेहूँ काटा जाता है। उसी तरह से क्योंकि धान की फसल को हमें ज़्यादा पानी चाहिए इसके लिए, हाँ, क्योंकि जून जुलाई में उगाते हैं, क्योंकि जून जुलाई में बारिश भी होती है, और उसको हम अक्टूबर नवंबर में काटते हैं। वो इसी बोला जाता है कि वो भूमि जहाँ पर हम दो फसलें ले रहे हैं लेकिन उसके बीच में एक परती बनी रहती है, तो इसमें क्या करते हैं कि किसान उस समय फसलदार जो फलीदार फसलें होती हैं उन्हें बोने के लिए व्यप्रमेय जो जिसे जो नवंबर में बोया अप्रैल में काटा, अब बीच में थोड़ा सा टाइम बचता है, फिर जून जुलाई में बोए तो अक्टूबर नवंबर में, तो उस समय में कोई ऐसी फसल उगाई जाती है जो जिससे कि उनको भी रेवेन्यू मिल जाए और फसल का जो एक चक्र है वो भी पूरा हो सकते हैं। तो किसान जो है इसमें मोस्टली फलीदार फसलें उगाते हैं, यानी मटर हो गया, जितनी भी दलहनी फसलें हैं वो इसमें उगाई जाती हैं। मटर है, सेम है, चना है, दालें हैं, वो इसमें आती हैं, क्योंकि ये इन पौधों की जो जड़ें हैं उनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण स्थिरीकरण वाले जो बैक्टीरिया हैं वो पाए जाते हैं, वो इसमें रहते हैं। ये जो जो बैक्टीरिया हैं ये वायुमंडल की जो फ्री ऑक्सीजन, वो फ्री नाइट्रोजन है, उसे ये यूजेबल नाइट्रोजन में बदल देते हैं। और इन फसल को काटने के बाद जो जो मृदा है वो अन्य फसलों के लिए उर्वरक बन जाती है, यानी वो फर्टाइल हो जा रहती है, क्योंकि जो भी पोषक तत्व पहली फसल ने लिए ये फसल उगाने के चलते वो उसमें बराबर उसमें उनका संतुलन बन जाता बना रहता है। इसके जो क्रॉप रोटेशन है उसके लाभ क्या है कि नाइट्रोजन समृद्धि द्वारा खेतों की उर्वरता और मृदा को पोषक बनाए रखा जा सकता है, अधिक उत्पादन होता है, भूमि का कटाव रुकता है, फसल उत्पादन में कम क्षय होता है, व्यय होता है, पैसा कम लगता है हमारा, और जो संसाधन है, उपलब्ध संसाधन है, उनका प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है, और खरपतवार, कीट और रोग नियंत्रण में सहायक होते हैं, वर्ष भर नियमित आमदनी का जरिया भी होता है। अब हम बात करते हैं मिक्स क्रॉपिंग की, यानी मिश्रित कृषि की। इसमें क्या होता है कि एक ही खेत में एक साथ हम दो या दो से अधिक फसलों को उगाते हैं, इसीलिए हम इसे मिश्रित कृषि कहते हैं। जैसे कि गेहूं हो गया, मटर हो गया, या गेहूं और सरसों है, मूंगफली और सूरजमुखी की अगर खेती कर रहे हैं, ये मिश्रित कृषि में शामिल होती हैं। इसमें या तो बीज बोने से पहले फसलों के बीज एक जगह मिलाकर खेत में छिड़के जाते हैं, या फिर अलग अलग पंक्तियों में बो देते हैं, या तो एक साथ ही वो डाल देते हैं, अदरवाइज एक रो में एक का बीज डाला, एक फसल का, दूसरी रो में दूसरे का बीज डाला। और क्योंकि उनका बोने का टाइम भी अलग होता है और उनको काटने का समय भी अलग होता है। मिश्रित खेती है, उसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि किसान को एक ही खेत से एक निश्चित समय अवधि में दो फसलों से मिल जाती हैं, और इससे भूमि की जो उर्वरता है वो भी बनी रहती है। अब हम बात करते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग की, यानी बहु फसल उत्पादन की। इसका मतलब क्या है कि हम एक ही भूमि पर एक ही वर्ष में दो चार फसलें उगा लेते हैं, और इसे हम कहते हैं बहु फसल उत्पादन। और ये तभी संभव होता है जब हम फसलों की उन किस्मों को उगाएं जो कम समय के लिए उगाई जाती हैं। इससे क्या होता है, इससे बेहतर परिणाम मिलते हैं, और बेहतर परिणाम अगर हमें प्राप्त करने हैं तो उसके लिए हमें एक उचित भूमि प्रबंधन की आवश्यकता होगी। और वास्तव में अगर हम बात करें तो जो जिन देशों में खाद्य समस्याएं ज़्यादा हैं उसमें बहु फसल उत्पादन जो है एक उत्तम हल माना जाता है, समझा जाता है, क्योंकि वो एक ही भूमि के एक ही हिस्से से, एक ही टुकड़े से हम अनेक विभिन्न तरह की फसलों को उगाने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। और इससे ये होता है कि एक छोटे से क्षेत्र में भी हम एक ही समय में कई सारी फसलें उगा लेते हैं। अब हम बात करते हैं फसलों के वर्गीकरण की। तो भारत में जो फसलों का वर्गीकरण होता है उनकी फैमिली के, यानी कुल के हिसाब से, लाइफ साइकिल के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, आर्थिक दृष्टिकोण के हिसाब से, और खास तो विशेष उपयोग के हिसाब से भी हम उनको वर्गीकृत करते हैं। जैसे अगर हम जीवन चक्र के आधार पर बात करते हैं तो फसलें होती है एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। एक वर्षीय यानी एक साल में उसका जीवन काल, मतलब बोया उगाया और हमने उसे हमें फसल मिल जाती है। द्विवर्षीय में जिसमें 2 साल लगते हैं, और बहुवर्षीय यानी दो एक से ज़्यादा सालों के लिए। और वहीं अगर ऋतु के हिसाब से बात करते हैं तो फसल 3 तरह से होती है। रबी की फसल होती है, खरीफ की फसल होती है, और जायद की फसल होती है। जो रबी की फसल है वो अप्रैल से जुलाई में उगाई जाती है, और जो खरीफ की है वो हमारी उगाई जाती है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। और जायद की फसल वो खास तौर से गर्मी के मौसम में या फिर अलग अलग मौसम में जो फसल स्पेशली एक ही सीजन के लिए जो मिलती हैं वो हम उसमें उगाते हैं। अगर हम आर्थिक दृष्टिकोण के हिसाब से देखते हैं तो उसमें हम जो फसलों को वर्गीकृत करते हैं, तो जैसे उसमें अनाज देने वाली फसल हो गई, मसाले की फसल, रेशेदारी फसलें, चारा, फल, औषधीय पौधे, तिलहन, दलहन, जड़, कंद, और आप बोलते हैं शुक्र शर्करा यानी शुगर वाली जो फसलें हैं उस वो शामिल की जाती हैं जिनसे चीनी मिलती है। उसी तरह से अगर हम विशेष उपयोग के आधार पर अगर हम फसलों को वर्गीकृत करते हैं तो उसमें हम अंतर्वर्ती फसलें हैं, नगदी फसलें हैं, मृदा रक्षक फसलें हैं और हरी खाद के लिए फसलें उगाते हैं। तो हम अरे यहाँ पर खास ऋतुओं के हिसाब से ही जो फसल उगती हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है, जैसे खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। तो खरीफ की फसल में हम उगाते हैं धान, बाजरा, कपास, मूंगफली, शकरकंद, उड़द, मूंग, लोबिया, ज्वार, अंडी, तिल, ग्वार, जूट, सनई, अरहर, गन्ना, सोयाबीन और भिंडी की फसल शामिल करते हैं। और भी और फसलें हम थोड़े से नाम ले रहे हैं इसमें। रबी की फसल में हम करते हैं गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, मसूर, आलू, तंबाकू, लाही और जई। जायद की फसल में कद्दू, खरबूज, यानी मोस्टली सब्जी वाली फसलें हैं, तरबूज, खरबूज हो गया, लौकी, तोरई, खीरा, हरी मिर्च, टमाटर होते हैं। और हम लोग मेडिसिनल में उगा लेते हैं हल्दी, तुलसी, लहसुन, मसाले जैसे लौंग, काली मिर्च, जो कि हमारे लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होते हैं और इनका हम अपने दैनिक जीवन में भी उपयोग करते हैं मसालों का खास तौर से। अब हम बात करते हैं जैविक कृषि की। तो जैविक कृषि जो है वो प्रकृति के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से जो खेती की जाती है उसे हम जैविक कृषि यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग की कैटेगरी में रखते हैं। और कि हमें पृथ्वी के साथ मतलब प्रकृति के साथ ही करना है, उसके विरुद्ध नहीं करना है, यानी हम उसमें ज़्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं और हम ऑर्गेनिक खादों को या मैन्योर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करके उच्च फसल उत्पादन का लक्ष्य प्राकृतिक पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना शामिल होता है और यह निश्चित रूप से प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले लोगों को ऊपर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालता है। अब हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में खास तौर से फल और सब्जियों को उगाने की जो पद्धति है उसको हम बागवानी के या हॉर्टिकल्चर की जो है उसको हम उद्यान कृषि के नाम से जानते हैं। और इसमें फल और सब्जियों की वृद्धि और पैदावार के विषय में ही अध्ययन किया जाता है। ये एक साइंस की एक ब्रांच है जिसमें इसका किया जाता है। और भारत में कृषि मंत्रालय के अंतर्गत एक राष्ट्रीय बागवानी मिशन का गठन किया गया है जो गांव गांव में, शहरों शहरों में बागवानी या हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देता है। अब हम बात करते हैं उन्नत कृषि तकनीकों के बारे में जिसमें शामिल होते हैं। ये भी कब हुआ? जब हरित क्रांति हमारे यहाँ शुरू हुई थी, स्वामीनाथन जी के अनुसार ही है। और इसमें क्या था कि बदलते पर्यावरण यानी कि हमारी जो प्रकृति का है, धरती का जो तापमान में वृद्धि, समृद्धि के स्तर में बढ़ोतरी और ओजोन परत की हानि में जो हानि है उसके चलते नई विषमताओं में कृषि को सस्टेनेबल बनाने के साथ साथ दुनिया की जो आबादी है उसको भरपूर मात्रा में भोजन प्रोवाइड किया जाए, इसीलिए उत्पादकता के स्तर में क्रमागत वृद्धि करना ही सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर का ये एक हिस्सा है। और आज हम देख रहे हैं कि हमारे जो टेम्परेचर है, धरती का जो तापमान है, वो दिन पर दिन कुछ सेंटीग्रेड बढ़ता जा रहा है और उसी लिए इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए खाद्य सबको मिले भोजन जुटाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और ये रीज़न क्या है कि जो खेत हैं हमारे उसमें हमने बहुत सारे उर्वरक, कीटनाशी, पीड़क नाशी और अन्य तरह के रसायनों से का जो अत्यधिक प्रयोग किया उसके चलते हमारी जो भूमि है उसकी स्थिति, उसकी दशा जो है खराब हुई है। और जिससे भूमि में के जो लाभदायक कीट थे जैसे केंचुआ हो गया वो और दूसरे भी जो कि खेती में मदद करते थे कि वो नष्ट हो गए, क्योंकि जब हमने केमिकल या फर्टिलाइजर्स डाले तो उसने पेस्टिसाइड जब डाले तो उसने ये नहीं देखा कि ये सिर्फ हानि पहुंचाने वाले कीटों को ही नष्ट करना है, उसने वो लाभकारी कीटों को भी नष्ट कर दिया। इसके चलते क्या हुआ कि भूमि में भोजन जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी हो गई, और आज जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनका मानना है कि हम अच्छी फसल के बीज तो बो सकते हैं और बुवाई के तरीकों में सुधार ला सकते हैं, फसल की कटाई के लिए भी वैज्ञानिक तकनीकों का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, और उनमें से जो कुछ तकनीकें हैं जिनको वैज्ञानिकों ने विकसित किया है और आज हमारे देश के किसान उन तकनीकों का उपयोग भी कर रहे हैं, जैसे मृदा को कृषि योग्य बनाना, यानी मृदा जो है भूमि की पहली ऊपरी परत है जो पृथ्वी को एक पतले आवरण के रूप में ढकती है, और ये जो है पौधे को एक बेस और वृद्धि के लिए एक प्राकृतिक माध्यम देती है, और मृदा के विभिन्न पत्थरों में बहुत सारे जो विभिन्न परतें हैं उसमें बहुत तरह के पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ मिलते हैं, उनका संश्लेषण से वो बनती है, और शुरुआत में जो खेती की शुरुआत है वो मृदा के निर्माण से ही आरंभ होती है, और ये एक बहुत ज़रूरी प्रक्रिया है जो मृदा को समृद्ध और अधिक उपजाऊ बनाने में मदद करती है। इसमें खाद मिलाने के लिए बाद जो खेती के औजारों से फावड़ा हल और कृषि जो यांत्रिक में कृषि साधन है उनके प्रयोग से मृदा को समतल किया जाता है, फिर बीज का उपचार, बीजों पर जो माइक्रोब्स होते हैं वो आसानी से हमला कर सकते हैं, इसीलिए रोगी बीजों अगर बीज अच्छा नहीं है ख़राब है तो फसल भी खराब ही होगी, तो बीजों को रोग से बचाने के लिए किसान क्या करते हैं, बीजों को सिरोसन या एग्रोसन जैसे रसायनों में डुबोकर इनका उपचार करते हैं, और ये रसायन इन पौधों पर जो माइक्रोब्स हैं उनके आक्रमण को रोकते हैं, और एक बार ये उपचारित करने के बाद ही इनको बोया जाता है। फिर बीज क्यारी की तैयारी करी जाती है, और नवोद बीजों की देखभाल भी ज़रूरी होती है, यानी कि जैसे धान है कुछ सब्जी के बीज जो है ना सीधे नहीं खेत में बोए जाते हैं, पहले उनकी क्यारी में पौध बनाई जाती है, उसके बाद एक निश्चित अवधि के बाद ही उन पौध को हम खेतों में रोपित करते हैं, इसलिए इन छोटे पौधों को हम नवोदित कहते हैं। और जब एक किसान रोपणी क्रिया तैयारी जो करता है, रोपणी क्यारी की तैयारी करता है, तो उसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखी जाती हैं, जैसे क्यारी की जो मृदा कोमल और शिथिल हो सके ताकि जो नवोद्भिद हैं उनकी कोमल जड़ें अच्छी तरह से उग पाएंगी, यह खेतों को अच्छी तरह जो खोद कर और जोत कर जुताई से द्वारा प्राप्त की जाती है। दूसरा, बीज क्यारी जहाँ नवोद्भिद लगाए जाते हैं समतल होनी चाहिए, खेत में से सभी जो वीडिसाइड्स हैं जो खरपतवार हैं उनको हटा देना चाहिए, और उसके लिए कई सारे जो केमिकल्स हैं जैसे पैराथियन है, रोबिन है, डाइमिक्रॉल है, उनको हम इस्तेमाल करते हैं उस पर छिड़काव के लिए। प्रतिरोपण यानी जो रोपण क्यारी से नवोद्भिदों को हटाकर उन्हें मुख्य खेत में लगाने की प्रक्रिया को प्रतिरोपण कहते हैं। खाद और उर्वरक का प्रयोग करते हैं ताकि पोषक तत्वों की आवश्यकताओं को पूरी की जा सके, और साथ में हम इसमें प्लांट रेगुलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, ये ऐसे रसायन होते हैं जो पौधों की जो वृद्धि है उनको नियंत्रित करते हैं, और सिंचाई की पूरे तरह से बनते हैं पौधे, इसीलिए हम सिंचाई के लिए करते हैं, और सिंचाई में हम सरफेस अंडरग्राउंड स्प्रिंकलर ड्रिप सिंचाई का आधुनिक प्रणाली में हम इस्तेमाल करते हैं, और जब फसल तैयार हो जाती है तो हम उन्हें कटाई करते हैं, उसके लिए बहुत सारे औजारों का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम अपनी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू।